तो आपने देखा होगा कि YouTube ने इस हफ्ते से उम्र की पुष्टि के लिए आई रोल आउट करना शुरू कर दिया है, और यह ऑनलाइन तानाशाही के बढ़ते चलन का एक हिस्सा है, खास तौर पर लोगों की ऑनलाइन पहचान को उनकी वास्तविक पहचान से जोड़ने के मामले में। और हाल के हफ्तों में आईडी सत्यापन का चलन और भी बदतर होता जा रहा है, क्योंकि सरकारें आपकी वास्तविक पहचान को आपकी ऑनलाइन पहचान से जोड़ने के और भी तरीके विकसित कर रही हैं, और इंटरनेट पर आप जो कुछ भी करते हैं उसकी पूरी जानकारी लोगों को मिल सके। तो इस आईडी सत्यापन के पीछे ब्रिटेन का ताज़ा कानून ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम था। ये वास्तव में लगभग 2 साल पहले पारित किया गया था, लेकिन यह इस साल लागू हुआ है, और इस कानून के पीछे का विचार यह है कि यह बच्चों को ऑनलाइन असुरक्षित सामग्री से बचाना है, और यह सोशल मीडिया कंपनियों पर यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य डालता है कि उनके उपयोगकर्ता उम्र के अनुकूल हों और वे उनके प्लेटफॉर्म का उपयोग करते समय उम्र के अनुकूल सामग्री देख रहे हों। हालांकि यह इससे कहीं अधिक व्यापक है, और ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम ने उन वेबसाइटों को भी कवर करना शुरू कर दिया है जिन्हें लोग आमतौर पर बच्चों के लिए असुरक्षित नहीं मानते हैं। उदाहरण के लिए, विकिपीडिया पर इसका असर इसलिए पड़ा क्योंकि ब्रिटेन में इसके बहुत सारे यूजर हैं और इसमें ऐसी सामग्री है जो बच्चों के लिए असुरक्षित मानी जा सकती है। विकिपीडिया के आर्टिकल, इसमें सिर्फ विकिपीडिया ही शामिल नहीं है, लंदन फिक्स गियर साइक्लिंग फोरम जैसे साइक्लिंग फोरम हैं, जिस पर इस कानून की वजह से बंद होने का खतरा है, क्योंकि ब्रिटेन में इसके बहुत सारे यूजर हैं और इसका इस्तेमाल असुरक्षित सामग्री शेयर करने के लिए किया जा सकता है। ब्रिटेन का ऑनलाइन सुरक्षा कानून काफी खराब रहा है और ऑनलाइन समुदाय ने इसे बहुत अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया है। ब्रिटेन की सरकार लंबे समय से लोगों की निजी जानकारी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, जिसमें उनका आईक्लाउड डेटा भी शामिल है। पिछले कुछ सालों में ब्रिटेन की सरकार और एप्पल के बीच काफी तनातनी चली है, जहां ब्रिटेन की सरकार ने चुपके से आईक्लाउड में एक बैकडोर इंस्टॉल करने की कोशिश की। एप्पल को ये बात पसंद नहीं आई और उसने ब्रिटेन में आईक्लाउड के बेहद एनक्रिप्टेड वर्जन तक पहुंच को ब्लॉक करने का फैसला किया। बच्चों की सुरक्षा पर हमेशा ध्यान नहीं दिया जाता है और हम देख रहे हैं कि दूसरी सरकारें ईयू में इसी तरह के तानाशाही नियमों को लागू करने के लिए इसका फायदा उठा रही हैं। इस पर एक बहस चल रही है जिसे कुछ सालों के लिए रोक दिया गया था, चैट कंट्रोल के विचार पर। चैट कंट्रोल एक ऐसी तकनीक है जिसके तहत आपके द्वारा ऑनलाइन भेजे जाने वाले किसी भी संदेश को स्कैन किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसमें बच्चों के लिए कोई खतरनाक सामग्री न हो। खास तौर पर यह तस्वीरों पर लागू होगा और यह किसी न किसी रूप में पहले से ही मौजूद है। अगर आप इंस्टाग्राम पर कोई तस्वीर पोस्ट करते हैं और वह तस्वीर सार्वजनिक हो जाती है तो उसे गैरकानूनी सामग्री के ज्ञात डेटाबेस से स्कैन किया जाएगा, और अगर आपकी तस्वीरों में गैरकानूनी सामग्री है तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। चैट कंट्रोल ऐसा नहीं है। चैट कंट्रोल उस तकनीक को लेकर किसी भी ऑनलाइन संचार में किसी भी संदेश पर लागू करना चाहता है जिसमें निजी संदेश भी शामिल हैं। डेनमार्क ने खास तौर पर इसे आगे बढ़ाया है, जो सालों से इसे लागू करना चाहता था, और अब उसे एहसास हुआ कि उसके पास एक मौका है क्योंकि वह ईयू परिषद का अध्यक्ष है, जो ईयू के नियामक निकायों में से एक है। और अभी ईयू के 27 देशों में से 15 ने खुलकर इसका समर्थन किया है और सिर्फ 3 देशों ने कहा है कि वो चैट कंट्रोल के इस आइडिया के खिलाफ हैं। इस पर अक्टूबर में वोटिंग होने वाली है, तो कुछ ही महीनों में ये हकीकत हो सकता है कि किसी भी प्राइवेट चैट में भेजी गई कोई भी तस्वीर ईयू द्वारा स्कैन की जाएगी। और जाहिर सी बात है कि आप पहले से ही बहुत सारी दिक्कतें देख सकते हैं, है ना? मुझे इसकी हर एक दिक्कत के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन के सिद्धांत का अपने आप उल्लंघन करता है, जिस पर बहुत से लोग निर्भर करते हैं। एंड टू एंड एनक्रिप्शन का मतलब है कि आपका मैसेज सिर्फ भेजने वाले और पाने वाले ही पढ़ सकते हैं, और इस बीच में लागू की गई कोई भी स्कैनिंग तकनीक उस प्रोटोकॉल को तुरंत तोड़ देती है, क्योंकि इसके लिए जरूरी है कि आपका मैसेज कोई ऐसा व्यक्ति पढ़े जो भेजने वाला या पाने वाला ना हो, और आपको लगता है कि ये जाहिर सी बात है। दूसरी तरफ ईयू का दावा है कि ये नियम तभी लागू किया जाएगा जब ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन का उल्लंघन न करे। हालांकि गणित स्पष्ट रूप से ईयू के नियमों का पालन नहीं कर सकता, और इसका सबसे स्पष्ट पहलू ये है कि इस कानून में एक विशेष छूट है। ये छूट राजनेताओं के मोबाइल उपकरणों और सेना के मोबाइल उपकरणों पर लागू होगी, क्योंकि राजनेता और सेना कभी अपराध नहीं करते हैं, इसलिए हमें उनकी जांच करने की जरूरत नहीं है। हालांकि इस कानून के साथ साथ यूके के ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम में वास्तव में ये जांचने के लिए कोई तंत्र नहीं है कि यह बच्चों की सुरक्षा में सुधार कर रहा है, जबकि यह ऐसा करने का दावा करता है। ईयू के बाल नियंत्रण कानून, यूके के चैट नियंत्रण कानून और यूके के एड सत्यापन कानून सभी बच्चों की सुरक्षा के विचार पर आधारित हैं। बिना ये जानने के लिए कि वे कैसे प्रतिक्रिया देते हैं इन कानूनों को बच्चों के सामने लाए बिना, मेरा मतलब है मैं इस मोर्चे पर कुछ व्यक्तिगत अनुभव दे सकता हूँ, क्योंकि जब मैं बच्चा था और स्कूल में था तो मेरे स्कूल ने वीडियो गेम वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी, है ना। हम कूल मैथ गेम्स नाम की एक वेबसाइट का इस्तेमाल करते थे और उन्होंने उसे प्रतिबंधित करने की कोशिश की और हमें पता चला कि प्रॉक्सी कैसे काम करती है और हम उन वेबसाइटों तक पहुँच सकते हैं। वैसे भी वेबसाइट ब्लॉक और इस तरह के वेबसाइट बैंड अगर उचित शिक्षा के साथ नहीं जोड़े जाते हैं तो बच्चे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत अच्छे हो जाते हैं। मुझे लगता है कि हाल ही में सबसे ज्यादा फायदा वीपीएन कंपनियों को हुआ है। नए ऑनलाइन सुरक्षा नियमों के लागू होने के बाद से यूके में वीपीएन का इस्तेमाल बढ़ गया है, इसलिए अगर आपके पास NordVPN स्पॉन्सरशिप है तो आप शायद हाल ही में बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन हाँ, वे मुझे किसी भी चीज से ज्यादा बुक बैन की याद दिलाते हैं। पिछले कुछ सालों में मीडिया के बहुत से हिस्से हैं जिन्हें बच्चों की सुरक्षा की आड़ में बैन किया गया है, और वास्तविक ईमानदार पत्रकारिता को बच्चों के लिए खतरनाक मानकर बैन कर दिया गया है। वर्तमान में बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जो पहले से ही पोस्ट की जा सकने वाली चीजों पर बहुत सख्त नियम लागू करते हैं, और इसकी वजह से लोग किल की जगह अनलाइव जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगे हैं, और इसकी वजह से लोग सेंसरशिप से बचने के लिए विरोध प्रदर्शनों पर चर्चा तो करते हैं लेकिन उन्हें संगीत समारोह कहते हैं। सेंसरशिप का काम लोगों को और रचनात्मक बनाना है, और इसे वास्तविक शिक्षा के साथ जोड़े बिना, खास तौर पर बच्चों के मामले में, इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि यह अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने जा रहा है। ये सब मुझे पैट्रियट एक्ट की याद दिलाता है, जो 9/11 के बाद लोगों की सुरक्षा में सुधार के लिए लागू किए गए नियमों की एक श्रृंखला थी और अंततः वैश्विक इतिहास में सबसे बड़े सामूहिक निगरानी घोटालों में से एक बन गई। बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाई गई तकनीक का उपयोग कभी भी केवल बच्चों की सुरक्षा के लिए नहीं किया जाता है। इनमें से कई मामलों में राजनेता या तो जानबूझकर अपने बिल की वास्तविक सामग्री को अनदेखा करते हैं या अपने बिल की सामग्री के बारे में खुलेआम झूठ बोलते हैं। चैट नियंत्रण विधेयक के प्रभारी यूरोपीय संघ के आयुक्त का साक्षात्कार लिया गया और यह बिल्कुल स्पष्ट था कि उन्हें उस कानून के बारे में कुछ गलतफहमी थी जिसे वह यूरोपीय संसद में पारित करने के लिए आगे बढ़ा रहे थे। स्वीडिश समाचार पत्र के साथ एक साक्षात्कार में यूरोपीय आयुक्त से इस चैट नियंत्रण कानून के बारे में कुछ सवाल पूछे गए थे जब उन्होंने बताया कि इन संदेशों की व्याख्या करने के लिए तकनीक कैसे काम करेगी। उन्होंने कहा, ये सूंघने, जांचने के बारे में है। आप कह सकते हैं ऐसा नहीं है कि आप संवाद पढ़ रहे हैं, मेरा मतलब है यह एक पुलिस कुत्ते की तरह है जो सूंघकर पहचान सकता है कि वहाँ कुछ है या नहीं। उद्धरण चिन्ह, मुझे सच में नहीं पता कि क्या वो मैसेजिंग कैसे काम करती है, लेकिन एक संदेश को या तो पढ़ा जा सकता है या नहीं पढ़ा जा सकता है। इस मामले में बीच का कोई रास्ता नहीं है। अगर आपने कभी देखा हो, जब टिकटॉक के सीईओ को कांग्रेस के सामने गवाही देने के लिए कहा गया था तो बहुत से लोगों को ये बहुत स्पष्ट हो गया था कि इस तकनीक को विनियमित करने के लिए कानून बनाने वाले लोगों को इस तकनीक के काम करने के तरीके की बुनियादी समझ नहीं है। लेकिन मैं उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि ये बिल जानबूझकर अपवाद बनाते पाए गए हैं जो बिल लिखने वाले लोगों को इन कानूनों के अधीन होने से छूट देते हैं। राजनेताओं को छूट दी गई है लेकिन आम जनता को यह विशेषाधिकार नहीं है, और पत्रकारिता, खासकर सत्तावादी प्रतिबंधात्मक राज्यों में, सिग्नल और टेलीग्राम जैसे ऐप के माध्यम से संचालित की जाती है जहां लोग जरूरी नहीं कि अवैध सामग्री की लेकिन अपराधों की तस्वीरें भेज सकते हैं। 2025 में युद्धकालीन रिपोर्टिंग का अधिकांश हिस्सा सोशल मीडिया के माध्यम से किया गया है और सोशल मीडिया के बिना लोग यह नहीं समझ सकते कि इन युद्ध क्षेत्रों में क्या हो रहा है। तस्वीरें भयावह हो सकती हैं, वे निश्चित रूप से हो सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वे एक महत्वपूर्ण पत्रकारिता का उद्देश्य पूरा करती हैं। और स्वतंत्र और गुमनाम संदेशों पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करना पत्रकारिता पर एक तरह से रोक लगाना है और उन्हें दुनिया को अपनी कहानी बताने से रोकना है। और इस तरह के कानून बच्चों को सुरक्षित बनाने में मदद नहीं करते हैं, वे बच्चों को दुनिया की हकीकत से छिपाते हैं और वयस्कों के अधिकारों का भी उल्लंघन करते हैं। ईमानदारी से कहूं तो ये बहुत शर्म की बात है कि यह सब इतनी जल्दी हो रहा है और पिछले कुछ सालों में युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ है जबकि हमने इस पर रोक लगाई है। युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया का प्रभाव केवल अवैध सामग्री देखने से कहीं अधिक है। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम ही नशे की लत को बढ़ावा देते हैं और वास्तव में बच्चों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। और वास्तव में सोशल मीडिया और इंटरनेट के उन पहलुओं पर दबाव न डालना कमरे में मौजूद हाथी की तरह है, और यह डेटा स्टोरेज के वास्तविक व्यवहारिक जोखिमों पर विचार करना भी शुरू नहीं करता है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर आप यूं ही भरोसा कर लें। हाल ही में टी ऐप का एक बड़ा लीक हुआ था जो एक सोशल मीडिया ऐप है जो महिलाओं को उन लोगों की तस्वीरें अपलोड करने की सुविधा देता था जिनके साथ वे डेट पर गई थीं, जो जरूरी नहीं कि सुरक्षित लोग हों। साइन अप प्रक्रिया के तहत उन्हें अपनी आईडी की तस्वीरें जमा करनी होती थीं। उनकी आईडी एक असुरक्षित डेटाबेस में रखी गई थी और कुछ हफ्ते पहले ही आम लोगों के लिए लीक हो गई थी। अगर हम ऑनलाइन वेबसाइट्स को लोगों की आईडी स्टोर करने के लिए बाध्य करते रहेंगे तो यह अपरिहार्य है कि ऐसा होता रहेगा। यह इंटरनेट का एक तथ्य है कि डेटा लीक होता है, हैक होता है, और मुझे लगता है कि इन हैक के जोखिम को कम करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। ईयू चैट नियंत्रण आने वाला है। इस पर अक्टूबर में मतदान होने वाला है। अगर आप ईयू में हैं तो मुझे यकीन है कि आप एक छोटा सा पत्र लिखकर अपने प्रतिनिधि को भेज सकते हैं। इसे बनाने के लिए एक स्वचालित टूल है और आप देख सकते हैं कि कौन से देश इस कानून का समर्थन करते हैं और कौन से नहीं। जैसा कि यह है, मेरा मानना है कि 15 ईयू देश हैं जो इस कानून का समर्थन कर रहे हैं और केवल 3 ऐसे हैं जो खुले तौर पर इसके खिलाफ आए हैं, जो ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड और पोलैंड हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि चैट नियंत्रण और आपके संदेशों को देखने के लिए व्यापक समर्थन है, लेकिन राजनेताओं के संदेशों को नहीं। हे यो, देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा है और आप चैनल को समर्थन देने का कोई और तरीका चाहते हैं तो वो पूरी तरह से मुफ्त है। कृपया मेरे पैट्रियन से जुड़ने पर विचार करें, यह नीचे विवरण में लिंक किया गया है। मैं यूट्यूब के बाहर कुछ समुदाय बनाने का प्रयास कर रहा हूं। और अगर आपको लगता है कि यह आपके लिए सही हो सकता है तो आगे बढ़ें। क्या मैंने बताया कि यह मुफ्त है? हाँ, यह मुफ्त है। हाँ, चलो उस पर क्लिक करो। ठीक है, आपसे प्यार है, अलविदा।